शांति। कहते हैं यूं तो कई आते हैं और जाते हैं इस जमाने में, कुछ बिरले ही जी पाते हैं अपने अरमान। ए मालिक मैं चाहूं यही तुझसे, जी चाहूं तुझसे कर सकूं तेरी पहचान। वो मालिक, वो खुदा, वो परमात्मा, उसकी पहचान क्या है? हर जन जो जन्म लेता है कहता है मैं भक्ति करूंगा, कहीं कहते हैं हम ज्ञान लेंगे, भक्ति और ज्ञान। हर श्रद्धालु चाहता है कि मैं भगवान से मिलूं, भगत चाहता है कि मैं भगवान से बात करूं, उस तक पहुंचूं, उस तक जा पाऊं। लेकिन भगवान, ईश्वर, गॉड, परमात्मा, इसकी कई अवधारणाएं हैं, कई मान्यताएं भी हैं। इन मान्यताओं को जीने का, उसको पहचानने का और परमात्मा तक पहुंचने के कई मार्ग भी हैं। अब परमात्मा का परिचय कहिए या उस परमात्मा तक पहुंचने की एक चाह कहिए, वो क्या है? ऐसी कौन सी मान्यताएं हैं जिनको हमें समझना जरूरी है, जिन्हें हमें जानना जरूरी है? इसी विषय पर आज चर्चा करने के लिए स्टूडियो में हमारे बीच मौजूद हैं ब्रह्मा कुमारी संस्था के वरिष्ठ भ्राता ब्रजमोहन भाई जी। भाई जी आपका स्वागत है, ओम शांति।
ओम शांति।
भाई जी, जैसे हम कहते हैं कि परमात्मा के हुक्म के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो जब हम ये कहते हैं कि परमात्मा का हुक्म उस पत्ते को भी हिला सकता है, मतलब इस पूरी सृष्टि को भी चला सकता है, इस मान्यता के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
ऐसा प्राय माना जाता है कि परमात्मा सर्वशक्तिवान है और इस सारी सृष्टि को वही चलाने वाले हैं, और उसी परिपेक्ष में ये कह दिया जाता है कि परमात्मा के हुक्म के बगैर तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। अर्थात जो कुछ भी इस दुनिया में हो रहा है उस सब के पीछे परमात्मा का ही डायरेक्शन है, जो परमात्मा करवाने चाहते हैं वही होता है और उसके अतिरिक्त कुछ नहीं होता। इसका दूसरे शब्दों में ये भाव अर्थ है कि मनुष्य जो है वो कुछ नहीं कर सकता, परमात्मा ही जो करवाता है वो करते हैं, ऐसा माना जाता है। तो एक प्रकार से तो परमात्मा की सर्वशक्ति को का ये एक्नॉलेजमेंट है, भक्तों के अंदर परमात्मा के लिए असीम भावना का परिचायक है। परंतु अगर हम इसको न्यूट्रली एनालाइज करें कि ये मान्यता कहाँ तक सत्य है, तो आप कई बातें पाएंगे। एक तो ये है कि यदि ऐसा हो तो जो मनुष्य आत्माएं इसमें एक्टर हैं, हम और आप जितनी भी मनुष्य आत्माएं इसमें शरीर लेकर पात्रधारी हैं, उनके हाथ में तो कुछ नहीं रहता, उनको कुछ चॉइस भी नहीं रहती। और अगर इसको हम दूसरी बात से जोड़ें कि परमात्मा स्वयं कहते हैं कि मैं इस सृष्टि के आवागमन में नहीं आता हूं, मैं दुख सुख से न्यारा हूं, मैं कर्म भोग से न्यारा हूं, मैं इसका रचयिता हूं, आप आत्माएं इसमें एक्टर हो, इसमें पात्र आपका अपना है और आप जैसा करते हो वैसा ही पाते हो। हम देखते भी हैं कि मनुष्य सुख भी भोग रहे हैं, दुख भी भोग रहे हैं। इससे जोड़ा जाए तो आपको एक साफ साफ एक कॉन्ट्राडिक्शन नजर आती है, विरोधाभास है कि परमात्मा ही अगर सब कुछ करते और करवाते हैं, तो पहली बात तो वो खुद कहते हैं कि मैं इसका रचयिता हूं, मैं इससे न्यारा हूं, तो वो बात नहीं बैठती। अच्छा, अगर मान भी लिया जाए कि वही करते करवाते हैं, तो फिर उसका फल, जैसा कर्म वैसा फल, जो करेगा सो पाएगा, जितना करेगा उतना पाएगा, तो वो फिर इसका फल परमात्मा को ही मिलना चाहिए। और आप देखते हैं सुख और दुख भोग तो हम मनुष्य रहे हैं, हर एक को अनुभव होता है, ये कोई इमेजिनरी चीज नहीं है, हम फील करते हैं हम सुखी हैं या हम दुखी हैं। तो फिर ऐसा तो नहीं हो सकता करे कोई भरे कोई करवाए परमात्मा और हम भोगें खास तौर पे दुख, ये बात भी नहीं बैठती। फिर एक इसका एक तीसरा पहलू भी हो सकता है और वह ये है कि परमात्मा के गुण, परमात्मा की जो पहचान है, उनके कैरेक्टरिस्टिक और एट्रीब्यूट है, वो क्या है। तो परमात्मा तो हमेशा कल्याणकारी है, वो उनको लोग याद करते हैं कि दुख हरता सुख करता, सुख देने वाले हैं। परमात्मा श्रेष्ठ कर्मों की प्रेरणा देने वाले हैं। तो ऐसे परमात्मा अगर हुक्म भी करेंगे या प्रेरित भी करेंगे मनुष्य आत्मा को करने के लिए, या प्रकृति को भी प्रेरित करेंगे, तो किस प्रकार की प्रेरणा देंगे। तो जो जैसा होता है वैसी प्रेरणा देता है। एक सुख करता दुख की प्रेरणा तो नहीं दे सकता, श्रेष्ठ कर्म करवाने वाला भ्रष्ट कर्मों की प्रेरणा तो नहीं दे सकता। तो उस हिसाब से भी अगर आप देखेंगे कि प्रैक्टिकली दुनिया में तो खराब कर्म हो रहे हैं, पाप कर्म हो रहे हैं, और बल्कि वो आजकल के जमाने में तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। तो परमात्मा प्रेरणा करे और सर्वशक्तिमान परमात्मा प्रेरणा करे तो वैसा ही होगा। जबकि वो अपने हुक्म से एक पत्ते को भी हिला सकते हैं, तो उनके हुक्म के अनुसार अगर दुनिया चलती हो तो सदा ही स्वर्ग, सतयुग और सुखधाम रहना चाहिए। तो ये तीनों बातें बताती हैं कि ये भावनात्मक स्टेटमेंट है, परमात्मा की सर्वशक्ति को देखते हुए ये कह दिया गया है, लेकिन ऐसा है नहीं।
हाँ, कुछ बातें हमने भी ऐसी सुनी है भाई साहब। हर जो भी व्यक्ति है वो यही बोलता है, ईश्वर को पाना कोई किसी भी मार्ग से जा सकता है। ईश्वर को पाने के लिए वो मार्ग किसी का छोटा होगा, किसी का लंबा होगा, कोई मार्ग आसान होगा तो कोई कठिन होगा। तो परमात्मा की प्राप्ति के अनेक मार्ग हैं, उन मार्गों के बारे में आप क्या कहेंगे।
अब ये भी बात है, हम आज प्रत्यक्ष देखते हैं कि मनुष्य भिन्न भिन्न प्रकार के प्रयत्न परमात्मा को पाने के लिए कर रहे हैं। अनेक मार्ग हैं, अनेक नहीं बल्कि अनेका अनेक मार्ग हैं। जितने मत मतांतर हैं उसी अनुसार मार्गों में भिन्नता है। और इसको साबित करने के लिए कि सभी मार्ग आखिर तो वहीं ले जाते हैं, ये कहा जाता है कि अनेक मार्ग हैं, कोई भी मार्ग से आप चलें तो आप अल्टीमेटली पहुंच जाएंगे परमात्मा के पास। हाँ, ये हो सकता है कोई मार्ग किसी को सूट करता हो, कोई किसी को सूट करता हो, कोई लंबा हो, कोई छोटा हो, कोई कठिन हो, कोई आसान हो, ऐसा बताया जाता है। अब आप इस पर विचार करें तो प्रायः इसके बारे में जो एग्जाम्पल दिया जाता है वो है कि एक पहाड़ी की चोटी है, मान लीजिए हिमालय की चोटी है, उस पर लोगों ने चढ़ना है, पहुंचना है, तो वो विभिन्न रास्तों से जा सकते हैं। कोई नेपाल के रास्ते से जा सकता है, कोई तिब्बत से जा सकता है, चाइना से जा सकता है, भारत से जा सकता है, भारत में भी कई स्थानों से जा सकता है। और जैसे जैसे वो जाएगा, जैसी जैसी हिमालय की वहां पर परिस्थिति होगी, तो कोई मार्ग आसान होगा, कोई कठिन होगा, इस तरह से होगा। लेकिन अल्टीमेटली आप नॉर्थ से जाएं, साउथ से जाएं, ईस्ट से जाएं, वेस्ट, किसी भी दिशा से जाएं, आप उस चोटी पर पहुंच सकते हैं। इसी प्रकार से ऊंचे से ऊंचा परमात्मा है, तो उसको भी जैसे हम चोटी से तुलना कर सकते हैं। उनको पहुंचने के लिए आप किसी भी मार्ग से चलें, श्रद्धा भाव रखें, आप पहुंच जाएंगे, ये मान्यता है। और इसी के अनुसार अनेक मार्ग प्रचलित हैं। और दूसरी ओर अगर आप देखेंगे तो श्रीमद् भगवद गीता, जिसे शास्त्र शिरोमणि कहा गया है, जो स्वयं भगवान के महावाक्य, भगवानुवाच के तौर पे उसमें लिखे गए हैं, उसमें क्या कहा जाता है कि मेरी प्राप्ति, भगवान खुद रिवील कर रहे हैं कि मेरी प्राप्ति मेरे द्वारा ही होती है, मैं जो हूं और जैसा हूं उस रूप से मुझे जानकर अगर तुम चलोगे तब तुम मुझे प्राप्त कर सकते हो। और यहां तक भी लिखा हुआ है कि जो अभी प्रचलित मार्ग हैं उनके बारे में भी कहा गया है। भगवान ने देखा होगा कि मनुष्य अनेक मार्गों पर चलकर मेरे पाने का प्रयत्न कर रहे हैं, कि मेरी प्राप्ति वेद से, अध्ययन से, क्रियाओं से, यज्ञ से, तप से, दान से, पुण्य से नहीं होती। अर्थात परमात्मा स्वयं कह रहे हैं, अगर होती होती तो फिर मुझे धरती पर अवतरित होकर स्वयं अपना परिचय नहीं देना पड़ता। अब लॉजिकली अगर आप देखिए, ये सत्य है कि किसी भी स्थान पर पहुंचने के लिए आप अनेक मार्ग ले सकते हैं। मान लीजिए आपने अपने शहर के रेलवे स्टेशन पर पहुंचना है, तो रेलवे स्टेशन सबको पता होता है कि वो कहाँ है। अब जिस एरिया में लोग रहते हैं उससे वो भिन्न भिन्न दिशाओं से रेलवे स्टेशन पर आते हैं। कई बार ट्रैफिक बंद होता है या कुछ और होता है, वन वे होता है या कोई कंस्ट्रक्शन हो रहा होता है, तो एक एरिया के लोग भी घूमकर दूसरे रास्ते से आते हैं। और अगर आप प्योरली लॉजिकली देखें तो आप उस स्थान पर ईस्ट से, वेस्ट से, नॉर्थ से, किसी भी दिशा से पहुंच सकते हैं, आकाश के जरिए भी पहुंच सकते हैं, और चाहे तो धरती में सुरंग खोद कर भी पहुंच सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये सबको निश्चित और पता होना चाहिए कि रेलवे स्टेशन कहाँ है, तब तो पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर इसी बात में ही अनिश्चितता हो कि रेलवे स्टेशन कहाँ है, कोई कहे रेलवे स्टेशन सातवें आसमान पर है जैसे भगवान के लिए कहते हैं, कोई कहे नहीं रेलवे स्टेशन जो है पता नीचे धरती के अंदर है, और कोई कहे यहाँ इधर है, कोई कहे उधर है, और कोई ये कहे कि सभी जगह रेलवे स्टेशन है, फिर तो पहुंच चुके। तो आज जो सबसे प्रचलित मान्यता परमात्मा के बारे में है, यूं तो लोग कई प्रकार से कहते हैं, कोई शरीर छोड़ता है तो कहते हैं परलोक से धार गया, परमात्मा के पास चला गया तो परलोक में परमात्मा होंगे। कोई कहते हैं ब्रह्म में लीन हो गया तो कहीं ब्रह्म होगा। कोई कहते हैं परमात्मा से पैगंबर, मैसेंजर, मैसेज लेके आए तो कहीं तो होगा। परंतु आज सबसे प्रचलित मान्यता है सब जगह है। अब रेलवे स्टेशन सब जगह है, पहली बात तो सब जगह पहुंचने की जरूरत ही क्या, अगर ऑलरेडी आपके पास भी रेलवे स्टेशन है, बल्कि आप के अंदर ही रेलवे स्टेशन है, तो पहुंचने की बात ही नहीं। परमात्मा आत्मा एक है, परमात्मा सबके अंदर है, अनेक प्रकार की मान्यता है। तो ये कन्फ्यूजन जो है इसके कारण से वो लॉजिक बैठता नहीं, इसलिए लोग अनेक मतों पर चल रहे हैं, अनेक दिशाएं अपनाए हुए हैं और फिर भी भटक रहे हैं। आप देखेंगे हर श्रद्धालु यही कहेगा कि मैं पूरी श्रद्धा से मन लगाना चाहता हूं पर मेरा मन लगता नहीं। अब इसके विषय में ये भी बात है कि जो भी जिस मार्ग पर चल रहा है वो सत्य बोल रहा है, जितना उसने अनुभव किया है उसको कोई झूठ नहीं कह रहा, सत्य कह रहा है। जो कहते हैं आत्मा ही परमात्मा है उनके हिसाब से वो भी ठीक है, जो कहते हैं पत्थर में भी भगवान है उनके हिसाब से वो भी ठीक है। लेकिन हमने सबने बचपन में एक कहानी पढ़ी है, अंधों ने हाथी देखा, स्कूल में पढ़ाते हैं कि कुछ नेत्रहीन व्यक्ति हाथी देखने गए। अब हाथी देख तो सकते नहीं थे, उन्होंने उसको टटोला, जिसके हिस्से हाथी का जो भाग आ गया उसको वही वर्णन करेगा, वर्णन तो सत्य ही करेगा। जिसके हाथ में उसका कान आ गया वो कहेगा ये जापानीज फैन की तरह है, जिसके हाथ में उसका पांव आ गया वो कहेगा ये पिलर की तरह है, जिसके हाथ में उसका पेट आ गया वो कहेगा एक स्पाट दीवार की तरह है, पूछ आ गई तो उसने कहा कोई रस्सी की तरह, एंड सो ऑन। तो कहने का मतलब ये कि अलग अलग बात बता रहे हैं, अपने हिसाब से ठीक ही बता रहे हैं, लेकिन पूरे हाथी का किसी को भी परिचय नहीं, क्योंकि देख ही नहीं सकते। अब आप इसको मनुष्यात्मा से कंपेयर करें तो ये तो गीता में भी वर्णित है और सब लोग समझते भी हैं कि मनुष्य आत्माएं अल्पज्ञ हैं, परमात्मा सर्वज्ञ है। मनुष्य आत्माएं, हम और आप, कोई भी मनुष्य आत्मा हो, अपने पिछले जन्मों को भी नहीं जानती, आगे का भी हमको पता नहीं, अब अगली घड़ी क्या होने वाला है हमको पता नहीं। और परमपिता परमात्मा को जानना और उस तक पहुंचना तो अल्पज्ञ आत्माओं के लिए दूर की बात है। इसीलिए साक्षात ये प्रूफ है कि परमात्मा को खुद आके अपना परिचय देना पड़ता है। वैसे भी मान लीजिए आपने अपना परिचय देना है, आपके जो क्लोजेस्ट व्यक्ति होंगे उनको आपका 80% परिचय होगा, लेकिन 100% आपका परिचय आपके एंसेस्टर्स का आपको ही होगा। तो परमपिता परमात्मा का परिचय एग्जैक्ट पूरा सत्य परिचय तो उनको ही है। इस हिसाब से भी आप देखेंगे तो ये पाएंगे कि जन्म जन्मांतर से सभी आत्माएं इच्छा रखती हैं परमात्मा से मिलने की, लेकिन उनको मिलन होता नहीं। इसीलिए उनकी पुकार सुनकर के हे परमात्मा दर्शन दो, हे परमात्मा हमें छुड़ाओ, लिबरेट करो, परमात्मा अवतरित होते हैं।
परमात्मा अवतरित होते हैं। आपने जैसे अभी बताया हमको कि रेलवे स्टेशन पर पहुंच मार्ग बहुत से हो सकते हैं, आप कहीं से भी पहुंच सकते हैं, लेकिन वो मार्ग भी पता होना चाहिए या हमें जाना कैसे है वो भी पता होना चाहिए। ये अवधारणा इसी को कुछ लेके आगे बढ़ती है। कहते हैं ना कि परमात्मा घट घट में बसा हुआ है, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो बसू घट घट में। अब वो घट घट में बसा हुआ परमात्मा या उस तत्व तक पहुंचने की जो चाहना होती है उसके बारे में आप हमें बताएं।
हाँ, अब ये प्राय कहा जाता है भगवान घट घट में व्यापक है, या कहा जाता ये कहते हैं घट घट में व्यापक है। तो पहली बात तो ये है परमात्मा एक है, है ना, सब मानते हैं गॉड इज वन। अब घट कितने हैं, जितने मनुष्य हैं, जितने भगत हैं, मान लीजिए एक मंदिर में 1000 भगत भक्ति कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, तो 1000 घट हो गए। अब 1000 घट हो गए तो परमात्मा 1000 तो है नहीं जो घट घट में बसा हुआ है। अब घट कहते किसको हैं, घट कहते हैं दिल को, हृदय को। अब हृदय में क्या बसता है, वस्तु बसती है, व्यक्ति बसता है, या उसकी याद बसती है, उसकी स्मृति बसती है। एक माँ कहती है कि बेटा तो हमारे दिल में रहता है सदा। अब बेटा रहता है या उसकी याद रहती है, तो घट तो याद का स्थान है। तो ये हम कह सकते हैं कि भगत दिल से परमात्मा को याद कर रहा है। जैसे हनुमान जी ने अपना सीना खोला तो दिखाया ये राम है, तो राम थे या उनकी याद थी, तो नेचुरली याद थी। तो पहली बात तो ये है कि घट घट में याद रहती है, परमात्मा नहीं रहता। दूसरी बात, परमात्मा एक है तो एक को अनेक लोग तो याद कर सकते हैं, लेकिन फिजिकली तो परमात्मा घट में नहीं रहता। और जो हम पहले बात कर रहे थे सर्वव्यापी की, कि सब जगह ही परमात्मा को कह दिया गया है, अगर ये भी मान लें कि परमात्मा घट में है तो शरीर का एक हिस्सा दिल होता है, सारा शरीर तो अलग है ना। तो घट में बसने से भी ये साबित होता है कि परमात्मा सर्वव्यापी तो नहीं है। अगर घट में है तो हाथों में तो नहीं है, पांव में तो नहीं है। तो इस हिसाब से भी देखेंगे कि परमात्मा के बारे में मनुष्य आत्मा भ्रमित है। फिर इसके साथ ही ये कह देते हैं जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, ये भी एक बड़ी कॉमन सेइंग है। इसके साथ ही कहा जाता है, भगत कह रहा है जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, अर्थात सब जगह परमात्मा है। अब इसको भी अगर आप एनालाइज करेंगे तो जो कह रहा है वो कौन है, क्या परमात्मा ही स्वयं के लिए कह रहा है कि मैं जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है। अगर ऐसा होता तो परमात्मा कहते जिधर देखता हूं उधर मैं ही मैं हूं, क्योंकि मैं ही सब जगह हूं। अगर तू कहते हैं तो देखने वाला और जिसको देखा जा रहा है वो दो अस्तित्व हो जाएंगे, तब भी परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। इस प्रकार से बहुत सी भ्रांति है, हम श्रद्धा के वश मान लेते हैं। ये भावना अलग है कि मैं परमात्मा को हर चीज में देखता हूं। अच्छा, अगर इतनी शुभ भावना, अच्छी भावना है भी, तो दुनिया में तो खराब चीजें भी हैं। अब ऐसी जगह रविश पड़ा होता है जिससे व्यक्ति वैसे ही नजरें हटा लेता है, नाक पे रुमाल रख लेता है। अब ये कह सकता है कि जिधर इसमें भी परमपिता परमात्मा को मैं देखता हूं, नहीं, परमात्मा तो ऊंचे से ऊंचे हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं। व्यक्ति अपनी धार्मिक पुस्तक या किसी मूर्ति को भी ऊंची जगह रखते हैं, जमीन पे गिर जाए तो उठाते हैं, तो फिर ये बात कैसे टैली होती है।
आपने जिस बिंदु को अभी उठाया था भाई जी, परमात्मा सर्वव्यापी है, ये जो एक बहुत प्रचलित अवधारणा है कि परमात्मा सर्वव्यापी है, इस पर कुछ विस्तार से बताएं।
देखिए, ये दुनिया मानती है, दुनिया के लोग आज प्रायः सभी लोग ये मानते हैं वेयर इज गॉड, गॉड इज एवरीवेयर, परमात्मा सब जगह है। ब्रह्मा कुमारी ऐसा नहीं मानती, और हमारे पास इस बात की बहुत अच्छी रिसर्च है, परमात्मा द्वारा रेवलेशन है, और हमारा अनुभव है कि परमपिता परमात्मा सब जगह नहीं हो सकते। कारण क्या है कि एक ओर तो हम परमात्मा को ढूंढ रहे हैं, दूसरी हम उसको सर्वव्यापी कह रहे हैं। अगर हमें पता लग गया कि परमात्मा सर्वव्यापी है और सचमुच कन्विक्शन है हमारी सर्वव्यापी है, तो फिर ढूंढने की गुंजाइश कहां, हमें तो पता लग गया। तो इसलिए आप देखेंगे यहां बहुत बड़ी कंट्राडिक्शन है। हम ढूंढ भी रहे हैं, उनको पाने की प्रयत्न भी कर रहे हैं, उनके दर्शनाभिलाषी हैं, उनसे प्रेयर कर रहे हैं, फिर साथ साथ कह रहे हैं सब जगह है। तो फिर तो बात यह बन जाती है कि अगर सब जगह है तो जो कह रहा है उसमें भी है, फिर उसको ढूंढने की भी गुंजाइश नहीं है, पाने की भी इच्छा नहीं होनी चाहिए। पहली बात तो यह है। दूसरी बात कि हम देखते हैं परम आत्मा हम कहते हैं, तो परम आत्मा एक सुपरलेटिव डिग्री, जैसे इंग्लिश में होता है डियर डियर डियरेस्ट, जो सबसे ज्यादा प्रिय होता है उसको हम परम प्रिय कहते हैं। परम प्रिय, परम पिता, परमात्मा, सुप्रीम सोल। तो जरूर अन्य आत्माओं की भेंट में ही वो परमात्मा है, ऐसे तो नहीं कि सभी आत्मा ही परमात्मा है। अगर सभी आत्माएं परमात्मा होती तो सबका नाम परमात्मा रख देते, नहीं वो अलग है। हम देखेंगे कि जब हम नॉर्मल भाषा में भी कहते हैं, जैसे गांधी जी थे तो हम कहते थे महात्मा गांधी, अर्थात बाकी आत्माओं से जरा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिस्टिंक्ट हैं, कुछ श्रेष्ठ हैं। ऐसे बहुत सारे महात्मा बुद्ध हैं, उनको हम उन्होंने पूरे धर्म की स्थापना की, उनको महात्मा कहते हैं। फिर देवताएं हैं मंदिरों में, देवी देवताएं, उनको हम देव आत्माएं कहते हैं। और दूसरी तरफ जाएं तो कोई व्यक्ति पाप कर रहा है तो उसको हम पाप आत्मा कहते हैं, क्योंकि करती तो आत्मा है, शरीर के द्वारा करती है। किसी को हम पुण्य आत्मा कहते हैं, दान वगैरह करता है। किसी को हम दुष्ट आत्मा कहते हैं, ऐसे भी कहते हैं। अब आत्माओं आत्माओं में तो डिग्रीज हैं, इन सब में तो किसी को परमात्मा नहीं कहते, देव आत्माओं को भी परमात्मा नहीं कहते। अगर आप और जरा सोचें तो जो तीन सूक्ष्म देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु और शंकर जी, उनको भी हम देव देवता कहकर ही वंदना करते हैं। ब्रह्मा को तो आदि देव कहते हैं, ब्रह्मा देवाय नमः, विष्णु देवाय नमः, शंकर देवाय नमः। शंकर जी को महादेव भी कहते हैं, पर देवता ही कहते हैं ना। अब परमात्मा तो इनमें भी कोई नहीं है, तो परमात्मा तो इनसे भी ऊपर है, इनके रचयिता है, तो सर्वव्यापी कैसे हो सकते हैं। और फिर बहुत सारी बातें हैं कि पिता और पुत्र अलग होते हैं, पुत्र में पिता की क्वालिटीज होती हैं, लेकिन पिता और पुत्र होते तो सेपरेट हैं। ऐसे ही हम सब कहते हैं परमात्मा सृष्टि का रचयिता है। अच्छा, सारी सृष्टि का रचयिता है, सारी कायनात उसी ने बनाई है, ऐसा भी मान ले तो रचयिता और उसकी रचना अलग अलग होंगे, तब भी परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। और वैसे जनरल भाषा में आप देखेंगे हम ये क्या कहते हैं, विश्व बंधुत्व। सब मनुष्य विश्व बंधुत्व की भावना रखो, वर्ल्ड ब्रदरहुड है, कि हम सब भाई भाई हैं। अच्छा, भाई तभी हो सकते हैं अगर पिता ऊपर है। अगर परमपिता परमात्मा है और आत्मा के नाते से हम सब मनुष्य आत्माएं भाई भाई हैं, तो परमपिता परमात्मा अलग हो गए और हम हमारे पिता हो गए। अगर आत्मा ही परमात्मा हो तो फिर वर्ल्ड ब्रदरहुड होना चाहिए या वर्ल्ड फादरहुड होना चाहिए, फिर भी बात नहीं बनती। इस प्रकार से ऐसी कोई भी एक ऐसी बात नहीं है जो इस बात को स्पष्ट करे कि परमात्मा सर्वव्यापी है। अब जैसे हम मैसेंजर्स कहते हैं कि पैगंबर जिनको कहते हैं कि मोहम्मद साहब खुदा के पैगंबर थे, वो भगवान से पैगाम लाए। क्राइस्ट सन ऑफ गॉड थे, ऐसे कहा जाता है। तो जरूर वो परमात्मा अलग हो गया जिससे मैसेज लाए, वो पिता अलग हो गया जिसके वो बेटा है, सन है। तो इस हिसाब से भी सर्वव्यापी नहीं है। और सबसे बड़ी बात, अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ में सोचें, तो आप देखेंगे कि जो वस्तु जहां होती है उसकी प्रेजेंस उसके गुणों से प्रकट होती है। मान लीजिए आप एक आइस फैक्ट्री में चले जाएं, तो आइस फैक्ट्री में आपको ठंडा लगेगा क्योंकि बर्फ है, वहां बनती है बर्फ। किसी डीप फ्रीजर में हाथ डालें तो आपको लगेगा कि यहां ठंड है, टेम्परेचर बिलो जीरो है, तो हाथ को लगेगा। इसी प्रकार से किसी फर्नेस को, भट्टी को देखें, वहां अग्नि जल रही है तो अग्नि की प्रेजेंस आपको उसके गुण से फील होगी। कहीं बागों फूलों का बगीचा है, वहां नेचुरल खुशबू आ रही है, आपने आंखें बंद भी कर रखी हैं तो भी आपको लगेगा भाई यहां खुशबू आ रही है। तो जो वस्तु जहां है उसका गुण वहां प्रकट होता है। अब परमपिता परमात्मा के गुण क्या है? परमपिता परमात्मा शांति के सागर हैं, और दुनिया में परमपिता परमात्मा सर्वव्यापक हो तो दुनिया में क्या होना चाहिए? परम शांति। जैसे परमात्मा का लोक, जहां परमात्मा निवास करते हैं जिसको हम परलोक कहते हैं, या गीता में जिसको परम धाम कहा गया है, जिसके लिए हमारा कोई भी इष्ट शरीर छोड़ता है तो हम उसकी इज्जत रखने के लिए जाता तो नहीं लेकिन कह देते हैं परलोक से धार गया, उसको शांति धाम कहते हैं, मुक्ति धाम कहते हैं। तो अगर इस दुनिया में परमात्मा सर्वव्यापक होते तो ये दुनिया ही शांति धाम होती, शांति धाम होती, मुक्ति धाम होती। तो फिर लोग मुक्ति धाम को अलग क्यों कहते हैं? लोग तो ये पुकारते हैं, हे भगवान हमें मुक्त करो, लिबरेट करो, तो इसलिए ये बात भी नहीं बैठती। परमात्मा के गुण की बजाय उसके ऑपोजिट जो है, अशांति दुनिया में फैली हुई है, लोग शांति के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, शांति के लिए कितने इंस्टीट्यूशन बनाए हुए हैं, धार्मिक लोग भी शांति के प्रयत्न कर रहे हैं, राजनीतिक तरीके से भी शांति के प्रयत्न हो रहे हैं। इसलिए कोई भी एक भी ऐसी बात नहीं जो इस बात को साबित कर सके कि परमात्मा सब जगह है।
अगर परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है,
हाँ,
तो फिर परमात्मा कहाँ है?
अब ऐसा है कि पहले इसके हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि परमात्मा को सर्वव्यापी कह कैसे दिया गया, आखिर कैसे ये प्रचलित हो गया परमात्मा सर्वव्यापी है, और दूसरे नहीं है उसके तो कहाँ है, ये एक बहुत बड़ा विषय है, अलग विषय है, और इसमें तो काफी समय लगेगा। जो व्यक्ति इस बात को जानना चाहे, आपके कोई दर्शक इत्यादि, तो बेस्ट चीज ये है, हम ये समझेंगे कि हर जगह ब्रह्मा कुमारी के सेवा केंद्र है, तो अपने निकटवर्ती सेवा केंद्र में जाकर इस बात का स्पष्टीकरण ले, इसको समझे, बल्कि उनको वहाँ अनुभूति भी कराई जाएगी राजयोग में बिठाकर।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। ओम शांति।
ओम शांति।
मैं अपने सभी दर्शकों से यह अनुरोध करना चाहती हूँ कि जिस तरह भाई जी ने हमें बताया कि परमात्मा का सच्चा परिचय प्राप्त करने के लिए हम जहाँ भी रहते हैं अपने निकटस्थ ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र पर हम जा सकते हैं, वहाँ जाकर परमात्मा का सच्चा परिचय प्राप्त कर सकते हैं और साथ ही परमात्मा की गहन अनुभूति भी हम प्राप्त कर सकते हैं।
अपने सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए संपर्क करें 8826599309 पर या 9650692057 पर। हमारा ईमेल आईडी है studio.org@gmail.com।
ओम शांति।